अध्याय 6 प्राचीन जापान की सभ्यता। पृष्ठ संख्या 47। एक नवीन राष्ट्र के रूप में प्राचीन जापान के जागरण का वर्णन आरंभ करने से पूर्व इस परिवर्तन की एकदम पूर्ववर्ती प्रमुख सांस्कृतिक विशेषताओं का उल्लेख करना नितांत आवश्यक है। आधुनिक जापान निश्चित रूप से 1850 के जापान का शिशु है, इसलिए शिशु के बारे में जानने से पूर्व उसके पूर्वजों के संबंध में ज्ञान प्राप्त करना भी उतना ही आवश्यक है। सैनिक वर्ग 19वीं शताब्दी के जापान की संस्कृति की एक प्रमुख विशेषता सैनिक वर्ग की महत्वपूर्ण स्थिति थी। योरितोमा के काल से सामान्यतः शोगुन या उसके मंत्रियों के नेतृत्व में राज्य का शासन सैनिक वर्ग द्वारा होता था। जिन चंद सम्राटों ने अपना आधिपत्य प्रदर्शित करने का प्रयत्न किया, उन्हें भी सेना पर उतना ही अधिक निर्भर होना पड़ा जितना शोगुनों को होना पड़ा था। धीरे धीरे वहां एक ऐसी व्यवस्था का विकास हो गया जो मध्यकालीन यूरोप के सामंतवाद से मिलती जुलती थी और इसी के समान अपने स्वरूप एवं आदर्शों में सैन्य प्रधान थी। इस व्यवस्था का वाकूफू नाम तथा इसके अध्यक्ष की शोगुन उपाधि दोनों ही मूलतः सैन्य है। शोगुनों के नीचे सैनिक सामंत या दाइमियो का पद था। दाइमियो के साथ छोटे सरदार थे जिनमें विशेष रूप में समुराई अर्थात सामान्य योद्धा लोग या सैनिक सम्मिलित थे। उन्हें यह पदवी वंश परंपरा से प्राप्त होती थी और अपने ओहदे के चिन्ह के रूप में दो तलवारों को धारण करने में वे गर्व का अनुभव करते थे। अधिकांश योद्धा लोग किसी न किसी सामंत या शोगुन के प्रति पूर्ण निष्ठा रखते थे। वे अपने अधिपति सामंत से निर्धारित भत्ता प्राप्त करते थे। केवल थोड़े बहुत रोनीन अर्थात ऐसे समुराई जिन्होंने किसी कारण से सामंत पद त्याग दिया हो और अपने स्वामी की जागीर से दूर रह रहे हो ही ऐसे थे जिनका किसी से संबंध नहीं था। उनकी यह औधता सामान्य नहीं थी। अपनी असाधारण साहसपूर्ण प्रकृति अथवा गरीबी, अपयश एवं दुख के कारण या भूस्वामी की संपत्ति के विनाश के कारण ही उन्हें स्वतंत्र जीवन यापन करने को बाधित होना पड़ता था। योद्धा वर्ग के लोगों ने अपनी नीति संहिता वुशिदो का विकास किया था। इस सैन्य वर्ग के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ही निम्नतर वर्ग के लोगों की सत्ता थी। समुराई तथा व्यापारी एवं कृषक वर्गों के बीच बहुत अधिक अंतर था। निम्न स्तर के युवा लोग योद्धाओं की वेशभूषा तथा आचार व्यवहार का उस समय तक अनुकरण करते थे जिस सीमा तक कानून द्वारा स्वीकृत था, और इस प्रकार वे उनके प्रति आदर प्रदर्शित करते थे। राष्ट्र के आदर्शों का निर्धारण सामान्यतः सैनिक वर्ग के आदर्शों एवं उपलब्धियों के आधार पर होता था। पश्चिम के साथ संपर्क से जिस नए युग का उदय हुआ, उसमें सैनिक वर्ग का अस्तित्व कई बातों में जापान के लिए अत्यधिक लाभप्रद सिद्ध हुआ। इसने जापान को ऐसे अनुशासित लोग प्रदान किए जिनमें नेतृत्व के गुण स्वभाव से विद्यमान थे और जिनका अनुसरण करने के लिए जापान वासियों को प्रशिक्षित किया जा रहा था। प्राचीन जापान के नव जापान में संक्रमण काल में कुछ नेताओं को छोड़कर सभी नेता सैनिक वर्ग में से थे। सन 1945 तक सरकार इस वर्ग के वंश क्रमागत उत्तराधिकारियों का प्रभुत्व रहा। समुराई अर्थात योद्धाओं के नेतृत्व में तथा विशेष रूप से सैन्य परंपरा के प्रभाव के कारण जापान के लिए अपने को यूरोप के तौर तरीकों में ढालना अपेक्षाकृत अधिक आसान रहा। जापान ने आधुनिक युद्ध पद्धति की शिक्षा बड़ी कुशलता और आसानी से प्राप्त की। जापानियों में आज्ञा पालन, शारीरिक उत्साह तथा लड़ने की तत्परता आदि गुणों का विकास उनके यहाँ युगों से चली आ रही सैनिक पृष्ठभूमि के कारण अधिक सरलता से हुआ। इसी परंपरा के कारण पश्चिमी देश जापान की शक्ति से आशंकित थे और अंततः जापान उनके बीच अपने लिए उपयुक्त स्थान प्राप्त करने में सफल हो सका। हम देखेंगे कि जापान को पश्चिमी देशों के विरुद्ध संपूर्ण सुदूर पूर्व के लोगों की रक्षा के लिए खड़ा होना पड़ा। इस दिशा में उसने जो कुछ भी कार्य किया उसका श्रेय अंशतः वर्षों तक सैनिक सामंतवाद द्वारा प्रोत्साहित लंबे सैनिक प्रशिक्षण को है। योद्धा वर्ग को जागीरों द्वारा संगठित किया गया था। सामंत प्रथा में राज्य अथवा सम्राट या शोगुन के बजाय प्रजा की निष्ठा स्थानीय सामंतों के प्रति होती थी। तोकुगावा परिवार के प्रमुख के रूप में शोगुन ने अपने व्यक्तिगत प्रतिधारक और छोटे छोटे सरदार होते थे जो उसके प्रति वफादार होते थे, लेकिन भूमि पर अनेक दायमियों का अधिकार रहता था जिन्हें शोगुन के प्रभुत्व से ईर्ष्या थी। इसके अलावा समुराई भी शोगुन के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन उनके निष्ठा प्रथम अपने प्रत्यक्ष निष्ठा लेकिन उनकी निष्ठा प्रथम अपने प्रत्यक्ष अधिपति यानी सामंत के प्रति होती थी और उसके बाद शोगुन के प्रति और कभी कभी केवल अपने अप्रत्यक्ष अधिपति के प्रति ही होती थी। यद्यपि यह सामंत प्रथा छिन्न प्रायः हो चुकी थी और सम्राट के प्रति निष्ठा के आगे सामंतवाद गौण हो चुका था, फिर भी यह सामंती भावना बाद के जापान में कुछ काल तक कायम रही। राजपद की परंपरा। राजा का पद जापान की एक ऐसी महत्वपूर्ण प्राचीन परंपरा है जो आज भी जीवित है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि राज परिवार अनादिकाल से राज्य कर रहा है और उसकी उत्पत्ति सीधे देवों से हुई है। जापान में देशभक्ति की जो भावना दिखाई देती है उसका कारण शासक वर्ग को दैवी वंशज मानना है। यही विश्वास जापानियों की देशभक्ति की भावना का केंद्र बिंदु है। सम्राट के पद की पूजनीयता को विशेष महत्व प्रदान किया गया और इस प्रकार राजा ने प्रजा के मानस पर महत्वपूर्ण स्थान बना लिया तथा 19वीं शताब्दी की नवजात देशभक्ति की भावना को और अधिक दृढ़ बनाया। साथ ही पहले से चली आ रही यह परंपरा कायम रखी गई कि राजा को राज्य करने का तो अधिकार है पर शासन का नहीं। इस प्रकार वहां के शासन तंत्र को यूरोपीय ढंग के संवैधानिक राजतंत्र में परिवर्तित करना आसान हो गया। राजा के नाम पर जिसका प्रशासन में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं होता था उसके पूर्ण अधिकारों का प्रयोग शोगुन करता था। अब शोगुन की जगह राजा के कार्य का संचालन करने के लिए मंत्रिमंडल की स्थापना कोई कठिन कार्य न था। इन दोनों अवस्थाओं में चाहे शोगुन द्वारा राज्य का प्रबंध किया जाए या मंत्रिमंडल उस कार्य को करे, राज्य की पूर्ण सत्ता राजा में ही निहित थी, परंतु वह स्वयं इसका प्रयोग बहुत कम करता था। इसका अभिप्राय यह नहीं कि इस नए युग में वहां का मंत्रिमंडल भी किसी पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है, यद्यपि हाल में इस दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई है। इसका आशय यह नहीं कि वहां का शासन प्रबंध राजा की ओर से उसके कार्यों की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर चुने हुए योग्यतम व्यक्तियों द्वारा किया जाता था। यह कभी भी पूर्णतः ज्ञात नहीं हो सका कि किस विषय में राजा ने कितने व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग किया है। प्राचीन आदर्शों से उद्भूत आधुनिक प्रशाखाएं। आधुनिक जापान की देशभक्ति अर्थात राजा के पद में केंद्रीभूत आत्मसजग राष्ट्रीयता का विकास प्रधान रूप से गत 70 वर्षों में ही हुआ है। जो लोग केवल 20वीं शताब्दी के जापान से ही परिचित हैं उन्हें शायद यह बात कुछ विचित्र मालूम हो कि सामंत युग की समाप्ति के आसपास तक जापान की जिस देशभक्ति से हम आज सुपरिचित हैं उसका तब नामो निशान तक न था। आज राष्ट्रीयता की जो तीव्र भावना यहाँ दिखाई देती है वह अंशतः प्राचीन जापान की विशेषताओं, समुराई की सामंतों के प्रति निष्ठा, जापानियों की उपहास एवं अपमान के प्रति भावुकता, तोकुगावा शोगुनों द्वारा संस्थापित दृढ़ आधार तथा राजा के प्रति निहित आदर भाव का ही परिणाम है। जैसा कि हम देख चुके हैं, व्यक्तिगत रूप में समुराई के मन में क्योतो स्थित राजा या वहां के राष्ट्र के प्रति जरा भी निष्ठा न थी। उसे सम्राट जीमू के अलावा किसी दूसरे परिवार के व्यक्ति का राज्य पर अधिकार स्थापित करना सह न था। समुराई ने मंगोलों द्वारा जापान पर किए गए आक्रमण के प्रति रोष प्रकट किया, परंतु तोकुगावा शासनकाल में आकर ही समुराई वर्ग के कुछ व्यक्ति यह अनुभव करने लगे कि जापान देवों की भूमि है तथा वे वहां के राज सिंहासन के न्याय सम्मत अधिकारी की अधिकारहीनता पर असंतुष्ट होने लगे। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि समुराई में अपने सामंत के प्रति सच्चे अर्थों में निष्ठा थी। उसकी नीति संहिता का एक महत्वपूर्ण अंश उसका अपनी प्रत्येक प्रिय वस्तु, पत्नी, बच्चों और यहाँ तक कि अपने जीवन तक को अपने स्वामी के लिए समर्पित करने के लिए तत्पर रहना था। अपने स्वामी की मृत्यु होने पर वह आत्महत्या तक कर लेता था। इन अवसरों पर इतने अधिक बड़े पैमाने पर यह आत्मसंहार चल पड़ा था कि तोकुगावा के आरंभिक शोगुनों को इसे रोकने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ा। प्राचीन शासन काल में व्यक्तिक निष्ठा की भावना सामंत के प्रति केंद्रित रहती थी, लेकिन सामंत युग की समाप्ति के पश्चात सम्राट एवं उसका पद इस निष्ठा का केंद्र बन गया। उनमें निष्ठा की यह भावना इतनी तीव्र थी कि इसे विदेशी आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते थे, और बाद में पश्चिमी राष्ट्रों के साथ संपर्क ने वहां के लोगों की सुषुप्त तथा सहज राष्ट्र प्रेम की भावना को उद्बोधित किया। समुराई की आचार संहिता की एक विशेषता आत्मगौरव के प्रति अत्यधिक भावुकता थी। व्यक्तिगत अपमान का प्रतिशोध मृत्यु द्वारा भी लिया जाता था। एक पुत्र को अपने पितृघातक के जीवित रहते हुए इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है। इस कन्फ्यूशसी विचार को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया। पुत्र द्वारा अपने पितृघातक से प्रतिशोध लेने की अनेक कहानियां सुनने में आती है। सेवक अपने स्वामी का वध करने वालों का नामो निशान तक मिटाने के लिए संदिग्ध रहता था, चाहे इसके बदले उसे अपने सारे परिवार का ही क्यों न बलिदान करना पड़े। आत्मसम्मान की रक्षा के लिए समुराई की तलवार हमेशा म्यान से बाहर रहती थी। उसे अपने पद की प्रतिष्ठा पर अत्यधिक गर्व था। उसका यह गर्व उसकी जातिगत विशेषता हो गई, क्योंकि उसमें यह सामंत युग से भी प्राचीन काल से पाई जाती है। सामंत युग के बाद भी यह यथार्थ पूर्व बनी रही, और यह अब जापानियों की एक व्यक्तिगत एवं राष्ट्रीय विशेषता बन चुकी है। पश्चिमी देशों में जापान के अधिवासियों के साथ किए जाने वाले भेदभावपूर्ण व्यवहार पर उनमें जो रोष की भावना पाई जाती थी, उसकी व्याख्या सहज ही इससे हो जाती है। अमेरिका एवं कनाडा से जापानियों के कानूनन निष्कासन के प्रयास का उन्होंने कड़ा विरोध किया। इस विरोध का एक कारण तो इससे उनको होने वाली आर्थिक हानि थी, परंतु इसका प्रमुख कारण था उनकी मनोभावना तथा तो राष्ट्रीय सम्मान को ठेस पहुंचाना, क्योंकि कानूनन निष्कासन के इन नियमों से जो यूरोप के लोगों पर लागू नहीं होते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि उन्हें हीन समझा गया है।